दुनिया एक आवाज,
एक दुनिया एक आवाज,
ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज।
आवाज नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए,
आवाज जो नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए, ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज।
नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज की विशेष श्रृंखला चल है तो कल है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है नदियाँ, बांध और लोग, और इस विषय पर आज हमसे बात करने के लिए मौजूद है हिमांशु ठक्कर जी। जल है तो कल है यह कार्यक्रम इंडिया वाटर पोर्टल और वन वर्ल्ड साउथ एशिया के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी समय पर रोजाना 23 मार्च तक आप हमारे कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो हिमांशु जी, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जल है तो कल है में।
धन्यवाद।
सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग हो पा रहा है? यदि नहीं तो इसके लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार हैं?
ये एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है आपने और पूरे जल तंत्र के संबंधित है। और भारत एक बहुत विशाल प्रदेश है जिसमें बहुत विविध प्रकार के जलवायु स्थितियाँ हैं, लेकिन एक छोटा सा जवाब देना हो तो मैं कहूँगा कि जवाब है नहीं, समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए मुख्यतः कारण ये जवाबदार है कि हमारे जल संसाधन नीतियाँ और कार्यक्रम में मूलतः जनतंत्र का अभाव है। लोगों को कोई स्थान नहीं है, उनके पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्लानिंग प्रोसेस नहीं है। तो इसकी वजह से, और क्यों, ये तो प्रथम कदम होता है एक जनतंत्र में, उसके बाद उसके जिम्मेदारी तय करने की अकाउंटेबिलिटी के नॉर्म्स मैकेनिज़म्स होते हैं, ये कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से एक अपारदर्शी अनरिस्पॉन्सिव जल संसाधन नीति और कार्यक्रम बन गए हैं। तो ये मुझे लगता है मुख्यतः जिम्मेदार है। आज़ादी के बाद हमारी जब प्रथम सरकार बनी तब उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि इसको ठीक करें, दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया तभी, और उसके बाद की सरकार भी वो नहीं कर पाई है।
आज़ादी के बाद से आज तक भारत में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रदर्शन कैसा रहा है?
हमारी जो जल तंत्र है उसका जो कुल निवेश होता है, कुल एक्सपेंडिचर होता है, उसका 2/3 आज भी बड़े जल सिंचाई परियोजना, बड़े बांधों के लिए होता है। इससे कुछ क्षेत्रों को, कुछ इलाकों को, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ है, लेकिन एक मूलतः देखें तो क्या ये बड़ी सिंचाई परियोजना वास्तव में हमारे जल संसाधन विकास का केंद्र बिंदु बन पाई है? तो सवाल है नहीं। आज भी हम पूछें सवाल कि क्या हमारी जो कुल अनुत्पादन है हमारे देश का, आज करीब 230 मिलियन टन है, तो उस 230 मिलियन टन में बड़े बांध, बड़ी जल सिंचाई परियोजना का क्या योगदान रहा है? तो हमने एक आकलन किया तो 10% से कम रहा है। पिछले 15 साल में भारत ने करीब 1,12,000 करोड़ रुपये बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किया है। हम अपेक्षा करते हैं कि इतने 15 साल में इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद, 200 से ज़्यादा परियोजना पूरी करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं से जो सिंचाई क्षेत्र है वो बढ़ा होगा, लेकिन वास्तव में बढ़ा नहीं है, लेकिन वो करीब 31.5 लाख हेक्टर से कम हुआ है, जितना 15 साल पहले था उससे आज कम हुआ है। तो ये दिखाता है कि न सिर्फ बड़ी सिंचाई परियोजना हमारे अनुत्पादन के लिए, जल की सिक्योरिटी के लिए या विकास के लिए मूलतः केंद्र बिंदु नहीं हो पाई है, और न वो अभी कोई एडिशनल योगदान दे पा रहे हैं। तो हमें लगता है, हमें बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर पुनर्विचार हो।
तो भारत में जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य प्रदर्शन कितना सफल रहा है?
तो जल विद्युत उत्पादन के बारे में भी हमने देखा है कि भारत में आज करीब 37,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है जल विद्युत से, और हम पिछले 20 साल का हमने आकलन किया तो हमने पाया कि जो पर मेगावाट जनरेशन है, एवरी मेगावाट और इंस्टॉल कैपेसिटी का जो जनरेशन है वो हर साल कम हो रहा है।
सुनने में आता है कि जल विद्युत से भी जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव किस प्रकार होता है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है?
इसका वैज्ञानिक आधार है, और जो जलाशय होते हैं हमारे जहाँ से पानी बिजली घर में जाता है, उन जलाशयों के नीचे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो साफ हवा की एब्सेंस और ऑक्सीजन की कमी और ऑर्गेनिक मैटर का जो वहाँ होना है उसका वहाँ पर एक डिग्रेडेशन होता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन होने से मीथेन जनरेट होता है, तो ये उसका साइंस है।
सरकार नदियों के जल को रोककर बनाए जाने वाली ऊर्जा को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा कहती है, ऐसा कहना कितना उचित है?
बड़े जल विद्युत परियोजना के जो सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं वो उसके कॉस्ट बेनिफिट के आकलन में लिए नहीं जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये सस्ती है और स्वच्छ है, लेकिन जब आप उस इक्वेशन के अंदर जल विद्युत परियोजनाओं के संपूर्ण प्रभावों को डालेंगे और उसकी कीमत डालेंगे, सही में वास्तविक जो कीमत कोई और भुगत रहा है उसको डालेंगे, तो आप पाएंगे कि न जल विद्युत योजना ज्यादातर जगह पे सस्ती होगी और न स्वच्छ होगी।
मॉनसून के समय भारत के कई नदियों में जबरदस्त बाढ़ आती है और काफी जान माल का नुकसान भी होता है, इनसे निपटने के मौजूदा तरीके असफल हो चुके हैं, तो इसका क्या हल है?
सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हमको नदी में जो पानी दिखता है, एक नदी जो होती है वो एक आयना होती है, उसके नदी के कैचमेंट के जल प्रभाव क्षेत्र में जो हम करते हैं उसका प्रतिबिंब हमको नदी में दिखता है, नदी के प्रभाव उसके वर्तणूक में दिखता है, तो आप जब नदी के अपस्ट्रीम में जो पूरा इलाका है उसको इल्ट्रेट करेंगे, उसमें जो फॉरेस्ट है जंगल है उसको ख़त्म करेंगे, पेड़ को ख़त्म करेंगे, उसके उसमें जो लोकल वाटर सिस्टम्स थे उसको ख़त्म करेंगे, वेटलैंड्स को ख़त्म करेंगे, तो फिर क्या होता है कि जो बारिश का पानी बरसता है वो एक साथ बहुत सारा जल्दी से नदी में आ जाता है और बहुत बड़ी बाढ़ पैदा करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप नदी को इस तरीके से एक बिल्ली को आप बाघ बना देते हैं, इस तरीके से एक नदी जो वास्तव में इतना बाढ़ नहीं लाती थी वो इतना ज़्यादा बाढ़ लाती है। दूसरी बड़ी बात है कि हमारे देश में हर बड़ी नदी पे बहुत सारे बड़े बांध बनाए गए हैं, जब आप एक नदी पे बड़ा बांध बनाते हैं तो नदी का जो फ्लड कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरा बदल जाता है, और वो हम समझते नहीं हैं, और इसके लिए और इसकी जो वर्तणूक बदल जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि नदी के डाउनस्ट्रीम में जब पानी बांध भरने के बाद छोड़ा जाता है तो एकदम पानी छोड़ने से बहुत बड़ा प्रभावकारी फ्लड आता है, और नीचे वाले इलाकों में एक गलत सेफ्टी का कॉन्शियसनेस हो जाता है कि बांध बन गया तो नीचे सेफ हो गए, लेकिन सेफ होते नहीं है क्योंकि बाढ़ तो आनी है। उसी तरीके से दूसरा काम हम करते हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाते, तटबंध बनाते नदियों पे उसको बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन ये ज़्यादातर इलाकों में जहाँ पर तटबंध बनाए हैं हिमालय की नदियों में, तो हिमालय की नदी साथ में बहुत सारी सिल्ट भी लाती है, तो आपको जो तटबंध के उसके बीच में पानी को जब आप कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो वो सिल्ट को आप जाने का पहले क्या होता था कि सिल्ट फ्लड के साथ फैलता था और उसी से एक फ्लड प्लेन बनता है, जो गंगा का फ्लड प्लेन बना है और नदियों का फ्लड प्लेन बनाए वो इसी प्रक्रिया से बना है, लेकिन जब आप एक तटबंध बना देते हैं तो वो प्रक्रिया को बंद कर देते हैं और वो जो सिल्ट धीरे धीरे जमा होती है नदी के तल पे, नदी का तट ऊपर जाता जाता है और फिर नदी की जो फ्लड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और फिर जब तटबंध टूटता है तो वो जो पहले प्रभाव आता था उससे कई गुना ज़्यादा आता है, क्योंकि एक ही जगह पे पूरी नदी का पानी एक साथ निकलता है, तो बहुत भयंकर प्रभाव आता है और ऐसे इलाके में आता है जिनकी अपेक्षा नहीं थी। पहले लोग अपेक्षा करते थे कि बारिश के मौसम में बाढ़ आएगी, तटबंध बनने के बाद लोग सोचते हैं बाढ़ नहीं आएगी, और जब आती है तो और गंभीर प्रभाव लाती है।
और हिमांशु जी, कहा तो ये भी जाता है कि भूजल भारत की जीवन रेखा है, लेकिन भूजल स्रोतों में बहुत तेजी से कमी आ रही है, इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है?
ये बिल्कुल सही है कि भूजल हमारे देश की वास्तव में जल रेखा है। आज हमारे देश में जो गांव में पीने के पानी लोग उपयोग करते हैं उसका 85% भूजल से आता है, शहर और उद्योग भी जो पानी का इस्तेमाल करते हैं उसका 50% से ज़्यादा और हर दिन बढ़ रहा है वो भूजल से आता है, और जो सिंचाई होती है हमारे देश में, मैंने जो पहले कहा 60 मिलियन हेक्टर्स में सिंचाई होती है, उसमें से 60% से ज़्यादा भूजल से सिंचाई होती है, एंड हर हेक्टर जमीन जो भूजल से सिंचाई होती है उसकी उपज और सिंचाई से ज़्यादा होती है, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जो भूजल से सिंचाई होती है, ये जो पूरा हमारा जो निर्भर है भूजल के ऊपर, वो एवरी पासिंग डे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और साथ में हमारे भूजल का लेवल हर जगह पे कम जा रहा है, भूजल का प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि ये हमारे देश में वास्तव में भूजल को जल तंत्र के केंद्रों बिंदु में लाने के लिए और उसका सस्टेनेबल यूज़ के लिए जल तंत्र के केंद्र में लाना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। भूजल को यदि सस्टेन करना है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि जो बारिश बरसता है उसको वहाँ पर रोक के ज़मीन में डालना हो, जहाँ जहाँ संभव हो। और ये इसलिए सबसे समुचित उपयोग है, उपाय है, क्योंकि बारिश सब जगह पर गिरती है, कहीं ज़्यादा कमी लेकिन सब जगह गिरती है, और भूजल भी डिसेंट्रलाइज सोर्स है। तो आप जहाँ जहाँ बारिश होती है वहाँ रुक के उसको भूजल में रिचार्ज करेंगे तो सबसे समुचित होगा, उससे खर्चा भी कम होगा।
तो हिमांशु जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके पास जल संबंधी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप अपने मोबाइल पर टाइप करें जल और अपना प्रश्न लिखें और भेज दें 9811846246 पर। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 9811846246। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट hindi.indiawaterportal.org और edaa.in पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय एक और नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एक दुनिया एक आवाज,
एक दुनिया एक आवाज,
ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज।
आवाज नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए,
आवाज जो नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए, ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज। एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज।